राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ 14वां अध्याय श्लोक 11 से 20। 14वां अध्याय श्लोक 11 से 20।
Yeah.
भगवद गीता पाठ 14वां अध्याय श्लोक 11 से 20 14वां अध्याय श्लोक 11 से 20 वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यो जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यो जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते वसुदेव सुतं देवं संस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 हरिशरणं
पुरुषं पुरुषर्व समदुःख सुखं वीरं सोमृतत्वार कल्पते। बड़ी सुंदर कसौटी है। यंग ही न व्यथयन्ति थे, जिसको ये थे न व्यथयन्ति। मात्रा स्पर्शा पीछे मात्रा स्पर्शा तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अगर कहते हैं व्यथयन्ति थे पुरुषा पुरुषा, तो मात्रा स्पर्श है, विषेन्द्रियों का संबंध है ना। वे ये शीतोष्ण सुख दुखा अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। अनुकूलता होती है वह सुख होता है, प्रतिकूलता होती है दुख होता है। तो विषयेन्द्रिय संबंध अनुकूल होते हैं तो सुख देते हैं, प्रतिकूल दुख देते हैं। तास तितिक्षस भगवान के लिए तो शहण हो। शहण का मतलब है कि ये विकार पैदा न करे भीतर, न प्रेरित प्रियम प्राप्य नो प्रेरित प्राप्य सा प्रियम। मन अनुकूलता मिल जाए तो सुख न दे, प्रतिकूलता दुख न दे। तो इन बात है यंग ही न व्यथयन्ति थे, अनुकूल मिलने से सुखी हो गए तो व्यथा हो गई, और प्रतिकूलता मिलने से दुख हो गया तो व्यथा हो गई। सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है, ये पीड़ा है। तो यंग ही न व्यथयन्ति थे, न व्यथयन्ति थे मात्रा स्पर्शा, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो सुखी दुखी नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। और ये व्यथित कर देते तो मुक्ति का पात्र नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय मन अमर होने के लिए वो समर्थ होता है। और व्यथा पहुंचाती वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ नहीं है, मन योग्य नहीं है, वो पात्र नहीं है। अनुकूलता प्रसन्नता पैदा कर दी, प्रतिकूलता व्यथा पैदा कर दी, दुख पैदा कर दिया, अप्रियता होगी। तो न प्रेरित प्रियम प्राप्य, प्रिय अप्रिय तो शीतोष्ण सुख दुख होता ये तो होंगे, परंतु व्यथा नहीं होनी चाहिए, न प्रेरित न उद्विजित, तो ठीक है, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। गीता की कसौटी है। और मात्रा स्पर्श है, विषय संबंध है, वो अगर सुख और दुख देने वाले हैं तो मात्रा स्पर्श दोनों का नाम है, विषय संबंध का भी नाम है और विष्णु का नाम है मात्रा स्पर्शा कृष्ण के स्पर्शा मानो अशुद्ध पदार्थ नाशवान जो इंद्रियों का जिनसे ज्ञान होता है वे सब संबंध होने पर शुद्ध होते थे अनुकूल प्रतिकूल होने पर तो वे सुख दुख न दे दशा न पहुंचावे वो मुक्त हो जाएगा यार ये पहुंचा दे दशा पहुंचा दी वो मुक्त बंधन ये बंधन तो यही और बंधन क्या है संसार में यही बंधन है अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता होती है और प्रतिकूलता मिलने पर उद्वेग होता है हलचल होती है व्यथा होती है तो भगवान दोनों को व्यथा कहते हैं अनुकूल मिलने पर जो सुख होता है ये भी व्यथा है ये पीड़ा है ये भी और जो दुख होता है प्रतिकूलता मिलने पर ये भी एक पीड़ा है ये पीड़ा जिसको नहीं पहुंचा गई वो मृतत्व आय कल्पते अमृतत्व आय वो अमृत होने के बीच में समर्थ है कल्पते कृपु सामर्थ्य धातु से वे कृपो रोला रेगुलर हो जाता है तो ये व्यथा न पहुंचा इस वास्ते साधकों के लिए बड़ी सावधानी रखना है कि अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हलचल नहीं होनी चाहिए दुख नहीं होना चाहिए इसको योग कहते समत्वम योग उचित है क्षमता का नाम योग है गीता का योग है ये दूसरा तो प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान वो अष्टांग योग है गीता का योग ये है ये कुछ भी असर ना करे वो मुक्त हो जाएगा वो मुक्त हो गया तो ये सुख दुख होते हैं यही तो बंधन है सुखी और दुखी होना है सुख हर्ष है जड़ दुख बिन खाएं जड़ होता है सुख में खुश हो जाता है दुख में बोझा जाता है दुखी हो जाता है तो उद्वेग हो जाता है तो वो मृत्युआय कल्पते नहीं हो जाता दुख अनुद्विग्न बना सुखी सुखी के तस्मी गीत राग भय क्रोध स्थिर वो निरुच्य थे वो सिद्ध बुद्धि वाला मुनि कहलाता है तो ये जिसको व्यथा न पहुंचावे तो साधन करने वाले भाई बहनों को सावधानी रखनी चाहिए हर समय संसार क्या है अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है और संसार कुछ नहीं है कभी मन चाहिए होगी कभी मन चाहिए नहीं हुई बेमन चाहिए हो गई तो ये संसार का स्वरूप है ये ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल उसमें राग और द्वेष और हर्ष और शोक और ठीक और बेठीक राजी और नाराजी यही तो संसार है और संसार क्या है ये जिसके असर न पड़े वो बात गीता पास कर लेती है पास नहीं तो फैल जित सर्वो ये शाम साम्य स्थितम मन ये शाम मन साम्य स्थितम जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया क्षमता रे वो मुक्त हो जाता है वो संसार को जीत गया संसार पर विजय कर ली उसने ये अनुकूल तो प्रति संसार हुआ ये है जीवित अवस्था में जीत लिया जिसके हृदय में विकार नहीं हुआ अंतरण विकार नहीं हुआ सुख का दुख का विकार नहीं हुआ तो न प्रेषित प्रेम प्राप्त ये सांग साम्य स्थित माना निर्दोष अंगी समम ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका अंतकरण निर्दोष और सम हो गया वो ठीक कल्याण हो गया उसका निर्दोष तस्मात ब्रह्मण की स्थित तो निर्दोष और सम ब्रह्म है जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म में है ध्याय कामान यह सर्वान पुमांस करती निष्प्रिय कामना का त्याग कर दे ममता का त्याग कर दे अहंकार का त्याग कर दे तो क्या रहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म स्थिति और विषम में स्थिति राग द्वेष में हर्षों में स्थिति है तो ये जन्म मरण में जाएगा कारण गुण संगो से सदस्य होती होनी समझू ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। गुणों के संग से ही यह राजी और नाराजी होती है, व्यथा होती है, प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता होती है इनमें व्यथित न होने से। एक अनुकूल पदार्थ मिलने से प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता दोषी है। राग द्वेष भी उगते विषयान इंद्रिय शरण आत्म विशेष विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। विधेयात्मा प्रसाद को प्राप्त होता है। राग द्वेष भी उगते इंद्रिय विषयान शरण राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करता है। राग द्वेष रहित होता हुआ धन शोक न करता हुआ उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। प्रसन्न चेत वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ये है, ये इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत चेत इनके वशीभूत न हो। तो ये से परिपंथी न हो, ये दो परिपंथी है। परिपंथी कहते हैं शत्रुओं को, कौन के जो मार्ग में लूट लेते हैं, डाकू मार्ग में लूट लेते हैं, ये परिपंथी है। तो ये राग द्वेष परिपंथी है। क्या कर देते हैं, सुखी दुखी बढ़ा देते हैं, हर्ष वर्ष को बढ़ा देते हैं। तो उदासीन हो, गतर व्यथा व्यथा न हो, पीड़ा न हो, हलचल न हो, स्वतंत्र तो कैसे न हो कि ये ठहरने वाला नहीं है। आगवा पायलो अनित्य आने जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है और अनित्य है। इसे क्या राजी और क्या नाराजी, ना तो सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है। राजी नाजी क्या हो, ना तो दिन रहता है ना रात रहती है, दिन भी बीत जाता है रात भी बीत जाती है। ये तो बीत ही जाती है, रहती तो है नहीं एकदम। तो क्या फायदा इससे, ऐसे भी दुख क्यों हो। आप तो हरदम रहते हो और ये सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर आते जाते रहते हैं। आने जाने वालों में अपने क्यों दुखी हो गए, आगे जाओ इसमें क्यों चिप गई हो। ऐसे नाम कृतो भाव बुद्धि के सन लिप्यते। जब बुद्धि लिप्त हो गई है, सुख में राजी हो गए तो बुद्धि लिप्त हो गई, दुखी में आप उद्विग्न हो गए तो बुद्धि लिप्त हो गई। लिप्त नहीं गए, निर्लिप रहे। हम एक संत मिले थे बालकपण में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कहीं जाओ रबर की गेंद होती है ना, रबर की गेंद बनना, मिट्टी का और गोबर का लौंदा मत बनना। मिट्टी बहुत चिपक जाए नीचे पड़े, दूर को चिप गए, हाथों ने हाथ को चिप जाए, जब ये जमीन को पकड़ ले तो गेंद होती है कोई ना चिपकी गए, बहुत फुदगटी रहती है। ऐसे साधु को चाहिए कहीं चिपके नहीं, ये चिप जाता मर जाता है। विश्वास में बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला हो, साधु तो रमता भरा दागन लागे कोई। एक जगह रह जाए तो वो हर्ष हो जाए, राजी दराजी हो जाए, ऐसे हो गए हमारे हैं, ये दुष्ट हैं, ये हमारे श्रोता है उनके श्रोता है। ये लड़ाई के है बढ़िया उपाय, ये हमारे शिष्य है, ये आप, ये हमारे श्रोता है, ये आपके श्रोता है। तो ये आफत है, आफत भगवान कृपा करते हैं तो आफत नहीं आती है। ये अनुकूल प्रतिकूल सब व्यवस्था होती है, आदमी आते हैं मिलते हैं राजी नाराजी होते हैं, बड़ी खतरनाक चीज है। तो सावधान हो भाई, यंग है ना व्यथियन देते दशा नहीं पहुंचा। उदासीन हो गए व्यथा व्यथा दी सुनगी हलचल हलचल में असल मिटना ये है, योग है, दुख संयोग है वियोगम, योग संहितम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, इसका नाम योग है। दुख आते ही तो दुख संयोग में क्या है कि सम दुख सुख है, सुख दुख में सम, और द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख संज्ञा द्वंद्व से रहित है, तो सुख दुख द्वंद्व से रहित होने में तो सुख दुख है नहीं, और सम दुख सुख करके होते सुख दुख तो है तो सही सम है, तो दोनों का अर्थ एक होता है, सुख दुख रहित होना और सुख दुख में सम होना, एक नहीं मालूम होते हैं आप ख्याल बहुत बड़ा, सुख दुख में सम हो, वहां सुख दुख तो आते हैं पर वो सम रहता है, अरे सुख दुख से रहित है तो सुख तो है ही नहीं वहां, तो एक अर्थ नहीं दो अर्थ हुआ ना, दो अर्थ नहीं है एक अर्थ है, वो ध्यान दो, सुख दुख दो का नाम है, एक तो बाहर की सामग्री रहित बड़ा सुखी है, बेटा पोता है, धन है, संपत्ति भी वो है, घर है, कर्जा नहीं है, पास में पूंजी है, तो कहते हैं आदमी सुखी, अरे के विचार रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, अंतिम पैसा नहीं, दुखी है, कहते हैं तो बाहर की अनुकूल सामग्री का नाम है सुख, बाहर की सामग्री के अभाव का नाम है दुख, अनुकूल सामग्री प्रतिकूल सामग्री है उसका नाम दुख, तो ऐसे सुख दुख में तो वे सम रहते हैं, और एक सुख दुख ही है, बीच मन में खुशी आती है सुखी है, और मन में रंजगी आती है वो दुखी है, तो मन में जो रंजगी आती है ये इनसे तो रहित है, मन में सुख दुख तो होता नहीं, और बाहर के सुख दुख में सम है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, ध्यान दिया ना, मानो सुखदायी सामग्री मिल गई, दुखदायी सामग्री मिल गई, तो भीतर असर नहीं पड़ा, तो भीतर सुख दुख से तो रहित है, बाहर के सुख दुख से में सम है, तो बाहर की सुख दुख सामग्री में सम रहना और भीतर से दुख सुख दुख से रहित होना एक बात हुई, द्वंद्वता सुख दुख संगे गसन त्यमूढ़ा पद्म गयम, वे अमूढ़ परम पद को प्राप्त होते हैं, सुखी दुखी होते हैं वे जन्म से मरते रहते हैं, क्यों सुखी होगा वहां राग हो जाएगा, कारण गुण संगोष है सदा सद जीवन जन्म सुख उठते जीवन में जन्म होगा, और ये दाम जैसा नहीं पहुंचाते, आगे जाओ वही चला गया वही चला गया, दिन में से बीत गया रात भी बीत गई, ना रात ठहरती ना दिन ठहरती, क्या खुशी क्या दुखी होगी, तो सुख हर्ष है जड़ दुख के निकाली, रज्जब रोमे कौन को, अरे हर्षेश कौन विचार, गयेश आवन के नहीं रहे सुजावन हार, जो चले गए उनको रोवे तो आने में आने क्यों रोवे, अरे है उनको हंसे कितना तो अशोक भाई ये जाने वाला है, चाहे ये चले जाए चाहे तू चले जाए दोनों चले जाए, ये तो वियोग होने वाला है, इस वास्ते रज्ज में रोवे कौन को हंसे सु कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सु जावन हार, सब जाने वाला है तो क्या राजी क्या नाराज, ये बात है महाराज, देखो निरपक हो तमाशा, संतों ने कहा कि निरपक हो गए तमाशा, देखो सुख के पक्षपाती पर गया, अनुकूल के पक्षपाती हो गए तो निरपक नहीं हुआ, निरपक निजानंद पद न्यारा परमेश्वर परमेश्वर प्यारा, निरपक नाराज किसी के पक्ष में समुद्र को सुख स्वस्थ, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्कृति समा शत्रु से मित्र शत्रु मित्र सम, भरतिया ने कहा है अहो वा हरे वा बलवती रिपो वा सुर दिवा मणे मणौ वास्तु
नमस्ते वा
मनो वा दोष्ठे वा कुसुम शयने वा दृषदि वा त्रिणे त्रिणे वैने वा समम समृषो यान्तु दिवसा कुचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रदपत। कृषि पुण्यारण्य में पुण्य जंगल मन गंगा जी का किनारा पवित्र जंगल है, पवित्र गंगा जी बह रही है, इसे बैठे बैठे मोल रहे शिव 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 शंकर 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 हर 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 महादेव शंभु। शिव जी के भक्त थे भतृहरि, वो कहते हैं कभी ऐसा है एक तरफ सांप काला है एक तरफ हार पड़ा है, सवा सवा लाख के हीरे का हार है कीमती और एक सांप अहो वा हारे वा अहो मानो सांप ही अहो वा हारे वा बलवती रिपु वा सुरदी वा बलवान रिपु बैरी आ गया तलवार लेकर गए, एक अत्यंत प्यारा सूरद आ गया बलवती रिपु वा सुरदी वा मनो वा लोष्ठे वा लोष्ठ ढेला लोष्ठ ढेलो कहते हैं। और ये रसोई बनानी होती है ना, रसोई बनाने से पहले चूल्हे के पोता देते हैं तो वो मिट्टी में थोड़ा गोबर में पानी में डाल करके और उससे वो पानी पी लेते गोबर से जो शुद्ध हो जाए वो उसे उसका नाम लोष्ठ है। मणि है तो एक दोस्त है मणि कितनी कीमती है चरण क्योंकि वो क्या कीमती है मैं कह सकती है बड़ा हुआ दोस्त है वाह कुसुम शयने वादी वाह बढ़िया फूलों की सैया मिली थी एक पत्र पड़े वही ऊंचा नीचा सीधा तो वहां सोना हो जाते वहां सो गए सो गए। अब एक संत थे वो कहते थे सो जाता मैं तो उठता तो वे गिरते पत्थर काट 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 तुम बैठा कांकरा भैया पसीने हो उठे दिन गिरे पत्थर ऐसे पत्थर में सो गया और मोल दृश्य दीवा कुसुम शयने वा दृश्य दीवा दृश्य नाम पत्थर कुसुम शयन वा दृश्य दीवा और तृण वा स्थिर वा तृण घास में और स्थिर स्थिर केवल स्त्रियों का संबंध स्त्री का संबंध और स्त्रियों में आशक्त हो तो वो स्त्रीण कहता स्त्रीण है ये आदमी स्त्रीण है तो तृण हो और उसका स्त्रीण हो मान स्त्री का सुख हो हर चाहे घास फूस हो तृण स्त्रीण वा मम समुद्र सो जान दो दिवसा मेरी समुद्र से मैं देश जाओ इनमें समुद्र है तृण स्त्रीण वा मम समुद्र सा समृष्टि वाले के देश में शांति सब कृषित पुण्यारण्य किसी पवित्र जंगल में शिव 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 अब सुख आवे दुख आवे मित्र आवे शत्रु आवे आ राजा सांप आ जाए अनुकूल आ जाए प्रतिकूल आ जाए समृष्टि वर्षा तो सब दुख सोगम धीरम सोमृतत्ता कर वो मुक्ति का पात्र होता है। थप्पड़े लगते हैं कभी सुखकार कभी दुख है दोनों थप्पड़ है सुख भी थप्पड़ है या दुख भी थप्पड़ है इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो यह है कि सुख है दुख का कारण है या दुख का ही है जड़ तो सुख है उसके तो सुख ही आपस है सुख नहीं भोग दुख नहीं आएगा जो सुख नहीं भोगता उसके दुख आता ही नहीं या सुख भोगी को दुख मिलेगा ही नियम है बस नहीं चलता
यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 11 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम।